धवला पुस्तक तीसरी लेक्चर नंबर 16 ओ नमः सिद्धेय ओ नमः सिद्धेय ओ नमः सिद्धेय ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाऊनं केवलनाणुजोय छद्दवमणिज्यं पवाईः नमिऊणजिनं वणिमो दौवनियोगं गणियसारं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसके प्रथम खंड जो जीव स्थान है उसमें द्रव्य प्रमाणानुगम ये दूसरा अनुयोग द्वार है, और अभी हम तीसरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 61 पर आ गए। 61। हाँ, आपकी क्या प्रश्न है, शंका आपकी? पेज नंबर 37। अच्छा, हाँ, नीचे बीच वाला पैराग्राफ। देखो, यहाँ तो ये बात बता रहे हैं कि ये जो हम स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम समुद्र है और वहां तक एक राजू लेते हैं, परंतु उसके बाहर भी चतुष्कोण में तो कोनों में तो भूमि होती है, वो तो सबको मालूम है,
परंतु कर्म भूमि रहती है।
हाँ, परंतु इनका कहना है कि समुद्र के बाहर भी जो चौकोर हमने चौकोर निकालते हैं उसके बाहर भी जो अंदर की जितनी एरिया उससे भी संख्यात योजन जाके राजू के एरिया समाप्त होती है। हाँ, वो वात वाले से लगता हुआ है, वात वाले से लगता हुआ है, क्योंकि साइड का वात वाले आए ना वहां पर।
ये तो बीच में है, वात वाले से तो लग रहा है। एक राजू का एक
देखो,
अच्छा,
लोकाकाश बीच में एक राजू है। देख, ये लोकाकाश है, यहाँ एक राजू एरिया है और ये पृथ्वी ऐसी है। ये बीच वाला एक राजू भाई एक राजू एरिया है, ये है त्रसनाली। त्रसनाली यानी ये जो पृथ्वी है ना यहाँ पर, तो कहते हैं उसके बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र है, परंतु बाजू में यानी ये चौकोर होगा तो उसके बाजू में भूमि है सभी ओर से, ये उनका कहना है। वो स्वयंभू रमण समुद्र है, उसके बीच में सारे असंख्या द्वीप समुद्र। हम हमेशा ये इसको टच करते हुए लेते हैं, पर इनका वीरसेन स्वामी का कहना ऐसा है
और एक राज्य का,
हाँ, कि इससे भी आगे संख्यात योजन जाकर ये भूमि समाप्त होती है। और ये भूमि साइड से, अभी इसको साइड, ये साइड की भूमि है ना यहाँ पर, तो साइड में क्या है, वात वाले हैं। हम जो 5 योजन 4 योजन 3 योजन ऐसा कहते हैं,
तो ये सब भूमि वात वाले वाली है, संख्या योजन
मालूम। नहीं, ये तो भूमि है,
जमीन
है, तो उसके साइड से वात वाले है ना, ये लोकाकाश की साइड है तो वात वाले है साइड में। जैसे पृथ्वियों के नीचे 20,000 योजन वाले है 3, साइड में जहाँ मध्य लोक आता है यहाँ पर, साइड में उसकी डायमेंशन कितनी है, 5, 4 और 3 योजन। नीचे 7, 5 और 4 योजन से थोड़ा ऐसा टेपरिंग हुआ था अंदर, वात वाले तो साइड में उसके वात वाले हैं, क्योंकि ये दक्षिणोत्तर साइड यहाँ तो वात वाले हैं, दूसरे दो बाजू तो भूमि है जो 7 योजन ऐसी फैली हुई है। नहीं, पूरे त्रसनाली को कैसे होगी, हाँ, लोक को, नेचुरली लोक के सभी ओर से वात वाले हैं। यानी वात्वलय लोक का अंतिम पार्ट है, लोक के बाहर वात्वलय नहीं है, वात्वलय तो लोक का पार्ट है। हाँ तो अंत में हाँ समस्या उनकी 37 पेज पर थी, और वहां जो कापोत लेशा कहा है, तनुवात वलय का ही वो दूसरा नाम है, वो हमारी लेशा है कृष्णनील कापोत, उसकी बात नहीं है। पेज नंबर 37 पर उनकी शंका थी, तो इसका हमने बहुत हाँ
देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि दो मत है, एक तो हमने जो पहले सीखा था, ये दूसरा मत जो है कई आचार्यों का, वो ऐसा कहते हैं कि बाहर में संख्यात योजन जमीन है, जब स्वयंभूरवन समुद्र के बाद, और ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया है जो पहले हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन जब उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे ये बात लगता है कि इनकी बात सही है, जो आज तक हमने नहीं माना था।
हाँ। ज्योतिषी देवों की जो संख्या निकाली ना, ज्योतिष बिंबों की, तो उसके लिए जगत प्रतर डिवाइडेड है 256 अंगुलों का वर्ग कहा था, उसके आधार से उन्होंने ये सारी बातें प्रूव करके बताई।
इसमें ये ना मोस्टली हम लोग ने पूरा टच ही देखा है।
हाँ इसमें ये दूसरा मत उन्होंने अपना प्रस्तुत किया है, हाँ तो मूल नहीं वर्टिकली नहीं होता, आगे पीछे और साइड में, यानी ऐसा तीन और तीन नौ गुना होता है, सभी समुद्रात नहीं, ये जो वेदना समुद्रात और कषाय समुद्रात वो तीन तीन गुना, यानी टोटल उसकी एरिया जो आत्म प्रदेश है, अभी शरीर प्रमाण है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, नौ गुना हो जाएगा ऐसा,
यानी उसकी हाइट 10 फुट की है मान लो तो 30 फुट नहीं होगी,
वो हाइट उतनी रहेगी
तो 15 फुट होगी,
वेदना और कषाय विक्रिया करके कहीं पर भी है, और कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, कहीं पर भी वो शरीर लेके जाता है तो उसके प्रदेश फैले रहते हैं, उसमें ये तीन गुना वाली बात उसमें नहीं है।
महामत्स्य या कोई बढ़िया उगाना वाला जीव वात्वले को लग के पड़ा है और उसको वेदना समुद्र गाता है, तो उसका प्रदेश क्या बाहर जाएगा?
बाहर जाने का सवाल नहीं है यहाँ पर, बाहर कहाँ है, लोकाकाश का ही पार्ट एंड पार्सल है।
नहीं बराबर, पर लोका बात वाले 12 योजन का है और यहाँ पे 1000 योजन का जो पड़ा है उसका तीन गुना होगा, तो वो क्या बाहर की तरफ फैलेगा?
वो बात वाले तक जाएगा, उसमें क्या
बात वाले के पास बाहर नहीं जाएगा,
कैसे जाएगा? बात वाले इज अल्टीमेट लिमिट लोकाकाश की।
और दूसरे एक क्वेश्चन था, ये जो 7 राज्य हम लोग लंबी पृथ्वी देख रहे हैं,
हाँ
वहाँ पे एक मार्ग जो त्रस नाली है, तो ये जो एक राजू भाई एक राजू का जो लिमिट है वहाँ पे कोई पर्वत है कि कुछ
वेदिका है? एक राजू का अच्छा त्रस नाली की कहे?
हाँ त्रस नाली
की। नहीं त्रस नाली की कोई लिमिट नहीं ना, वो तो पृथ्वी ऐसे सीधी है,
तो वो क्या वहाँ पे
त्रसनाली नाम का कोई ऐसे बाउंड्री वाली पार्क नहीं है, ऐसा कांच का बॉर्डर
नहीं है, तो वहाँ पे जो तिरियन से वो एक राजू के बाहर नहीं जा सकेंगे,
नहीं रह जाएंगे क्योंकि त्रसनाली उसकी लिमिट है।
नहीं,
ये क्या कहना चाहते हैं, ये तो मत्स्य का उदाहरण दे के समझाया था कि कोई मत्स्य वहाँ उछल कर पड़ा है, देव ने उठा के फेंका है कुछ भी, तो उसके वेदना समुद्र से वहाँ पड़ा है, वहाँ नहीं उसको एकदम कोने में भेजा था, क्यों? क्योंकि आधा राजू उसको यानी कवर करनी, क्योंकि वो आधा राजू ऐसा एक राजू दूसरी ओर गया और वहां से नीचे 7वें नरक में उसने मारणांतिक किया, ये पूरा एरिया मैक्सिमम एरिया दिखाने के लिए कि बाय चांस ऐसा कोई होगा तो उसके प्रदेश इतने फैले रहते हैं, बस इतने के लिए वो एरिया बताई।
वो तिरंज मरकर पृथ्वी का एक हो गया तो त्रस नाली के बाहर जाएगा?
हाँ वो मरकर कहीं पर भी जाता है। नहीं यहाँ हमको मैक्सिमम एरिया कवर करने के लिए उसको 7वें नरक में भेजा था मारणांतिक समुद्घात करके, वैसे तो एक इंद्रिय में जाता है तो कहीं पर भी जा सकता है।
ये वात वाले में तो वायु का एक जीव ही रहेंगे
ना? नहीं नहीं
सूक्ष्म सारे
वात वाले कहते हैं उसमें, परंतु पूरे लोक में है ना सूक्ष्म जीव सभी में। देखो अभी हम पेज नंबर 61 पर आ गए। यहाँ देखो तीसरा चौथा पैराग्राफ है, अब गृहित गुणकार ऊपरी विकल्प को बतलाते, ये क्या चल रहा है उसकी बात बताते हैं। हमने एक ध्रुव राशि बनाई थी, जीव राशि का वर्ग, जीव राशि 16 तो उसका वर्ग है 256 और उसको मिथ्या दृष्टि राशि से भाग दिया था, 13 से भाग दिया था। अब ये अलग अलग संख्या ने मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पद्धतियां बताई कि 256 को यानी जीव राशि के वर्ग को ये ध्रुव राशि का भाग दिया, यानी 256 डिवाइडेड बाय 256 डिवाइडेड बाय 13 उत्तर कितना आएगा 13 नेचुरली ना। अब हाँ क्योंकि 256 कैंसिल गया और ये भागार का भागाकर गुणाकार में चला जाएगा। ऐसे उन्होंने बहुत अलग अलग पद्धतियां बताई। मान लेते कि 256 के वर्ग को भाग देंगे, पर उसको भाग देते समय ये जो ध्रुव राशि है ऊपर वो 256 गुना 256 रखे और नीचे ध्रुव राशि को 256 से गुणा करना तो बात वही आएगी। तो ऐसे अलग 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 बहुत सारे उन्होंने विरुद्ध वर्ग धारा में ऐसे स्थान बताए, नीचे के भी और ऊपर के भी। द्विरूप वर्ग धारा में तो सारे ऊपर ही, क्योंकि भाग देने देना है तो वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो 256 से लेकर आगे किसी भी वर्ग संख्या को भाग देना है तो भाग देने के लिए वो उसको उतनी संख्या से गुणा करना, जो हमको रिजल्ट 13 चाहिए। इस तरह से उन्होंने द्विरूप वर्ग धारा में बताया, द्विरूप घन धारा में भी बताया और घना घन धारा में भी बताया। अब गृहित गृहित 8 नहीं है, पहला स्थान 8 का वर्ग 64 उसका पहला स्थान है, 512 का वर्ग 216,144 कुछ था ना,
262,144
हाँ 262,144 बराबर। तो ये तो हमने अलग अलग देखे, यानी पहले तो गृहित ऊपरी विकल्प कहा था, गृहित विकल्प। उसके बाद गृहित गृहित विकल्प में क्या किया, किसी संख्या को भाग देना, जैसे पनट्ठी को भाग देना है ध्रुव राशि से, नहीं ध्रुव राशि से नहीं, पनट्ठी को 13 से भाग दो, यानी पनट्ठी डिवाइडेड बाय 13 और उसका भाग पनट्ठी को दे दो, बात वही होगी। तो किसी भी संख्या को पहले 13 से भाग दो और उस भागहार से उस संख्या को भाग दो तो 13 संख्या आएगी। ये उन्होंने करके दिखाया, द्विरूप वर्ग धारा में भी, घन धारा में भी, घना घन धारा में। उसको कहा था गृहित गृहित। अब ये गृहित गुणकार नाम का तीसरा विकल्प बता रहे हैं, अब इसको पढ़ेंगे। अब गृहित गुणकार उपरिम विकल्प को बतलाते हैं, उपरिम विकल्प इसलिए कि इससे बड़ी वो स्थान इससे बड़ा होना चाहिए। द्विरूप वर्ग धारा में संपूर्ण जीव राशि के उपरिम वर्ग के अनंतवे भाग का ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे उसी वर्ग राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे उसका उक्त वर्ग राशि के उपरिम वर्ग में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि। ये क्या कहना चाहते हैं उसको उदाहरण लेके हम देखते हैं। उपरिम वर्ग 256 है, ऊपर क्या लिखा था द्विरूप वर्ग धारा में संपूर्ण जीव राशि 16 मानी तो उसका उपरिम वर्ग 256 है, जीव राशि 16 है तो उपरिम वर्ग 256 है। उपरिम वर्ग के अनंत वे भाग का अनंत वा भाग है, उनको 13 ही कर दिया उन्होंने शायद, ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे, यानी जीव राशि के ऊपरी वर्ग का अनंत वा भाग है 256 का 13वां भाग है, उसका ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे उसी वर्ग राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे, पहले उसको भाग देना फिर उसी को गुणित करना, उसका उक्त वर्ग राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती। देखो इसको अभी कह रहे हैं ऊपरी वर्ग 256, उसका इच्छित वर्ग है 65,536 को हम भाग देना चाहते हैं। तो ये इच्छित वर्ग है ना, और 256 का अनंतवा भाग है 13, अनंतवा भाग यानी 13, 256 हाँ केवल 13 लेना, जीव राशि के ऊपरी वर्ग का अनंतवा भाग यानी 13, जीव राशि 16 है उसका ऊपरी वर्ग 256 है उसका अनंतवा भाग 13 है, इच्छित वर्ग में भाग देने पर, इच्छित वर्ग हमारी 65 है, 65,536 भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे यानी 65 डिवाइडेड बाय 13 आया, उससे उसी वर्ग राशि को गुणित करके यानी 65 को गुणा करना, 65 डिवाइडेड बाय 13 से 65 को गुणा करना, अभी जो लब्ध आवे उसका उक्त वर्ग राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर यानी उसका 65 के वर्ग को भाग देने पर, बात वही है मगर इन्होंने वो संख्या बढ़ाई है, पहले उसका वर्ग किया फिर उसी को उससे भाग दिया, अल्टीमेटली उसका उत्तर 13 आने वाला है, मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है यानी ऊपरी वर्ग 256 है और इच्छित वर्ग उसका 65 है, परंतु 256 का अनंतवा भाग यानी मिथ्या दृष्टि राशि ली उन्होंने, तो पहले 65 को 13 से भाग दिया तो 65 डिवाइडेड बाय 13 आया, तो 65,536 को ही 65 कहते हैं, तो उसी संख्या से गुणा किया 65 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 65, 65 का वर्ग डिवाइडेड बाय 13 आया, अब 65 के वर्ग को 65 वर्ग डिवाइडेड बाय 13 से भाग दो तो 65 कैंसिल हो जाएगी और भागाकार का भागाकार गुणाकार हो जाएगा, तो 13 मिथ्या दृष्टि राशि आती है। ये पहले भी ऐसी अलग अलग पद्धतियां बताई थी, अब यहाँ गृहित यानी उसको गृहित गुणकार यानी जिसको भाग देना था पहले उसको भाग दिया फिर उसी का वर्ग किया फिर उसका उसके वर्ग को भाग दिया तो संख्या 13 आ गई, पहले भी ऐसे अलग अलग बताए थे, अब उसके अर्धच्छेद करना है, तो अर्धच्छेद यहाँ बता रहे, देखो उक्त भागहार के जितने अर्धच्छेद हो, जो अभी हमने जिस भागहार से बताया ना उतनी बार भाज्य राशि के अर्धच्छेद करने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है। अब उक्त भागहार के 28 अर्धच्छेद होते हैं, ये कैसे उन्होंने निकाले, हमारी द्विरूप वर्ग धारा है 4 है 16 है 256 है 65 है, अब उसके अर्धच्छेद निकालने हैं, उन्होंने उसकी पद्धति अलग से बताई है, इसके अर्धच्छेद है 4, मान लेते हैं हमको 65 के अर्धच्छेद चाहिए, खाली 65 के नहीं, 65 के तो हमको मालूम है इसके 8 है इसके 16 है, परंतु हमें कौन सी राशि चाहिए, अभी 65 डिवाइडेड बाय 13 के अर्धच्छेद चाहिए हमको, अपूर्णांकों में भागहार है उसके अर्धच्छेद कैसे निकालना, तो उसको आधा आधा करते जाओ, कितनी बार आधा आधा कर सकते हो वो देखो, 13 को रखो ना, 65 का आधा 65 का, ऐसा करो देखो पहली बार 65 का आधा हुआ, फिर 65 का चौथा भाग हुआ, 65 का आठवां भाग हुआ, 65 का 16वां भाग हुआ, 65 का 32वां भाग हुआ, 65 का 64वां भाग हुआ, 65 का 128वां भाग हुआ, 65 का 256वां भाग हुआ, यानी 256 आ गए, यहाँ तक तो आ गए, हमें आगे आगे बढ़ना है, तो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार हुआ। अब कहो अभी उसके नहीं, ये उसका 256वां भाग हुआ, हम आपको करके बता रहे हैं, उसके आगे ये यहाँ आठवां स्थान हुआ ना, नौवे स्थान पर क्या होगा, 65 डिवाइडेड बाय 512, ये यहाँ पर, यहाँ पनट्टी डिवाइडेड बाय 256 ये संख्या आती है 8 बार आधा करने पर। अभी 256 को ही ले लो ना, अभी पनट्टी को भूल जाओ, क्योंकि हम ये 256 के आगे डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 बार आधा किया तो 256 डिवाइडेड बाय 13 संख्या आई। इसको और आधा करो, 90 बार किया तो 128 डिवाइडेड बाय 13 आ गए। 10वें बार किया तो 64 डिवाइडेड बाय 13 आ गए। 11वें बार किया तो 32 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। और 12वें बार किया तो 16 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। अब ये एक पूर्णांक एक तृतीयांश एक तेरांश है, इसको दो का भाग नहीं जा सकता, तो यहीं पर रुकेंगे हम। यानी कितने बार किया हमने? 12 बार किया, यानी इसके अर्धच्छेद कितने? 12। और आगे ये 16 तेरांश संख्या रह गई, एक नहीं रहा, एक पूर्णांक समथिंग रह गया, 3 तेरांश रह गए। एक अगर रहता तो हमारे अर्धच्छेद पूरे कहलाते, एक रहा पर ऊपर 3 तेरांश बाकी रह गए ना, तो 3 तेरांश बाकी रहे तो ये 16 तेरांश संख्या रह गई यहाँ पर। तो कितने अर्धच्छेद हुए? 12 ही हुए। यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये पनट्टी डिवाइडेड बाय 13 के अर्धच्छेद कितने हुए? 12 तो पूर्ण हुए और 16 तेरांश राशि रह गई। तो इतनी बार ऊपर की संख्या को आधी आधी करो, कितनी बार? 12 बार। अब पनट्टी को 12 बार करो तो 16 रह गए, 16 तेरांश नहीं रह जाएगी, 16 रह गए, क्योंकि हमने ऊपर की संख्या को आधा आधा किया। तो अभी अर्धच्छेद कितने रहे ऊपर के? 16 डिवाइडेड बाय 16 तेरांश, 13 ही संख्या है। इन्हें अर्धच्छेद करो नीचे की संख्या के, उतनी बार ऊपर की संख्या आधी आधी करो। उसके अपने अर्धच्छेद तो 16 थे, परंतु उसको 12 बार हमने आधा आधा किया तो 16 रह गए। दो सौ छप्पन का आधा किया या नीचे दो दूसरा भाग करो ना, उसको दो से भाग दिया हमने उसको। ये हम ऐसा ही करते आए हैं, दो से भाग देते आए हैं। ना ना ना, पौ उतना रहा, अपन हमें नीचे दो किया, नीचे चार किया, नीचे आठ किया, नीचे 16 किया, या नीचे 256 किया था, या नीचे 512 था, हमने वो सॉल्व करके दिखाया। एक्चुअली यहाँ हमने हर जगह 13 लिखना था, हमने केवल पनट्टी के निकाल के बताया, डिवीजन में 13 सर्वत्र था, 13 सर्वत्र लिखो तो 256 गुना 13 यहाँ रह जाएगा। उसके आगे ने पनट्टी डिवाइडेड बाय 256 क्या है? 256, यानी ऊपर 256 नीचे 13 रह गए, ये संख्या हमारी इतनी आ गई। उसके आगे उसका आधा किया, या हम 256 डिवाइडेड बाय 26 भी लिख सकते थे, पर हमको लास्ट में 13 रखना है ना, इसलिए हमें छेद नहीं बढ़ाया, हम ऊपर को कम कर दिया। एक ही बात है संख्या की, हम छोटी, हम पनट्टी का देखो, हम छोटी संख्या लेके देखते हैं। ये पनट्टी को भूल जाओ, 256 डिवाइडेड बाय 13 हमारी संख्या है, और उसको हमको 256 को भाग देना है, यानी ऊपर भी 256 आने चाहिए। अब इसके अर्धच्छेद ऊपर लिखो और इसके अर्धच्छेद नीचे रखो, इसके अर्धच्छेद नहीं लिखना, इसके अर्धच्छेद निकालकर उतनी बार ऊपर की संख्या आधी आधी करना। तो इसके अर्धच्छेद कितने होते हैं? 256 डिवाइडेड बाय 13 के अर्धच्छेद कितने होते हैं? 256 के 8 होते हैं, परंतु 8वें बार अगर करने जाओ तो संख्या छोटी होती है, उसको भाग नहीं जाएगा। इसके अर्धच्छेद करने जाओ तो कितने बार आधा आधा होगा? पहली बार कितना हुआ? 128 बाय 13। दूसरी बार 64/13, तीसरी बार 32/13, चौथी बार 16/13, क्योंकि 16 के अर्धच्छेद आगे चार होते, अगर 256 के करने जाओ तो 16 के अर्धच्छेद और चार उसमें मिलाने पड़ेंगे, ये चार पूर्ण अर्धच्छेद आ गए और 16/13 अंश राशि बाकी रहेगी। यानी आगे इसके अर्धच्छेद करने जाओ तो 16/26 अंश हो जाएंगे या 8/13 अंश हो जाएंगे, ये एक पूर्णांक 3/13 अंश रहेंगे यहाँ पर, उसको दो का भाग नहीं जा सकता, इसलिए यहीं पर रुके। तो चार पूर्ण अर्धच्छेद आ गए और 16/13 अंश राशि रहेगी, तो चार पूर्ण अर्धच्छेद है तो इसको चार बार आधा करो, 256 के अर्धच्छेद हम देख, यानी 256 जो ऊपर की राशि है उसको चार ही बार आधा करो तो 16 आएगा ना, तो हमारे ऊपर 16 रह गया और नीचे 16/13 अंश रह गए। हाँ, ये हमने आगे की संख्या के अर्धच्छेद, कहीं पर जाओ लास्ट में 16/13 अंश नीचे रहेगी, ऊपर 16 रह जाएगा। अब यहाँ उक्त भागार के 28 अर्धच्छेद बताएं, कौन सी भागार के पनट्टी के वर्ग के डिवाइडेड बाय 13 के अर्धच्छेद उन्होंने 28 बताए और फिर 16/13 अंश रह गए ऐसा कहते हैं। अब इसका कैसा निकालना पहले बता चुके थे, हमें जीव राशि 16 है उसके अर्धच्छेद मालूम है 4। अभी हम कहाँ तक चले गए, देखो जीव राशि फिर 256 यानी जीव 16 का वर्ग, 256 लिखो ना अपने मालूम है संख्या, फिर पनट्टी, फिर पनट्टी का वर्ग, यहाँ तक है ना, यहाँ किसकी कौन सी संख्या थी, पनट्टी का वर्ग डिवाइडेड बाय 13 के अर्धच्छेद चाहिए, डिवाइडेड बाय 13 है वहां पर, तो कैसे करना है इसको, 16 के आगे कितने गए, 1, 2 और 3 आगे गए, तो 3 वर्ग आगे गए, तो 3 वर्ग आगे गए है तो हमने क्या किया था, 3 से 4 को गुणा किया ना, नहीं ऐसा नहीं किया, देखो निकालो फॉर्मूला निकालो, हाँ एक एक का विरलन कर दो रूप करना, चलो देखो 1, 2 और 3 है, 3 वर्ग स्थान आगे गए ना, तो 1, 2, 3 का विरलन करो, हर एक के आगे 2 लिखो ऊपर, आपस में गुणा करो, 2 दुनी 4 दुनी 8, 8 आ गए। अभी इसके 16 के अर्धच्छेद है 4, तो 8 चौक 32 आ जाएगी, नहीं 8 में से 1 माइनस करो डायरेक्ट, 8 माइनस 1 7, 7 चौक 28, ये 7 चौक 28, तो प वर्ग डिवाइडेड बाय 13 के अर्धच्छेद कितने, तो 28 पूर्ण और आगे वो एक पूर्णांक 1/13, 3/13 अंश यानी 16/13 अंश रह जाएंगे, तो प वर्ग को 28 बार आधा आधा करो, तो 4 अर्धच्छेद की 16 राशि रह जाएगी, क्योंकि ऐसा अगर उसके अर्धच्छेद देखे तो इसके 4 है, 256 के 8 है, पनट्टी के 16 है और इसके 32 है, इसमें से ये 16 के अर्धच्छेद माइनस करो तो भी वही संख्या आती है 28, 28 पूर्ण और 16/13 अंश बाकी रहेगी। तो ये अर्धच्छेद की बात बहुत बार पहले हो चुकी है, इसलिए तो कितने जितने भागहार के अर्धच्छेद है उतनी बार ऊपर की राशि भाज्य राशि आधी आधी करते जाओ, ये यहाँ कहते उसके अपने अर्धच्छेद 32 है पर हमने उसको 28 बार आधा आधा किया तो क्या रह गया, 16 रह गया।
भागाकार है वो ग्रहित गुणाकार लेते हैं तो विल इट हेल्प अस यू नो फाइंडिंग आउट यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ यू नो मिथ्या दृष्टि जीव,
13
नहीं वो तो बराबर है पर हम जो भाग देते हैं उससे गुणा करते हैं,
बस वही तो वही है, ये संख्या के यानी अलग अलग पद्धति से कैसे उसी संख्या को हम भाग दे रहे उसी को गुणा कर रहे हैं,
नहीं हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है कि क्या हम लोग को मिथ्या दृष्टि राशि मिलानी है,
मिलानी नहीं वो संख्या कौन सी है कितनी बड़ी है वो कहना चाहते हैं, मिलानी नहीं है।
अच्छा कितनी बड़ी है
वो, अनंत कितना बड़ा है, किससे कितना गुना है, कितने भाग में है वो कहना है, बस इतनी बात है, वो अनंत का प्रमाण लाना था, इच्छित वर्ग ने हमने तो ध्रुव राशि एक बना दी 256 डिवाइडेड बाय 13, या कभी कभी अभी ध्रुव राशि को भी यहाँ नहीं लिया डायरेक्ट हमको 13 यानी 256 है उसका अनंत वा भाग 13 है और उससे उसके पनट्टी को भाग दिया उसके वर्ग को भाग दिया जो अलग अलग संख्या है।
तीन काल के समय है उससे मिथ्या दृष्टि राशि अनंत गुणी है बराबर है ना।
तीन काल के समय नहीं अतीत काल के समय, अरे तीन काल के समय तो पुद्गल से अनंत गुणे हैं, जीव राशि से पुद्गल अनंत अनंत उससे तीन काल के समय अनंत अनंत।
नहीं तो मेरे को हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि कभी भी ये राशि इतनी रहेगी 13 मिथ्या दृष्टि जीव की राशि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो वो कैसे होगी तीन काल के समय हम
तीन काल के क्यों ले रहे हैं अतीत काल के समय कहो भूतकाल के तीन काल के नहीं तीन काल के समय की राशि पुद्गल से अनंत अनंत गुणा है। जीव राशि का कुछ भाग है ना ये भले अनंत बहुभाग कहो जीव राशि का अनंत वा बहुभाग इसको कहो तो ठीक है। इसीलिए वो अनंत की बात है ये आपके उन्होंने कहने का प्रयोजन ही यह था कि अनंत काल बीत गया है फिर भी उससे भी अनंत गुना मिथ्या दृष्टि राशि है पहले ही बता चुके कहने का प्रयोजन क्या है क्षेत्र और काल से क्यों इतना समझाया क्षेत्र से भी कितने अनंत अनंत लोक कहा क्यों क्योंकि सारे जीव एक लोक में है सारे जीव एक लोक में है फिर उनकी संख्या देखने जाओ तो अनंत अनंत लोक इतने हैं यानी मिथ्या दृष्टि जो कभी समाप्त नहीं होने वाले इसी से
ये अनंत का डिनोमिनेशन हमारे ज्ञान में नहीं आता है इसलिए कंफ्यूज होता है अनंत काल गया फिर भी अभी अनंत मिथ्या दृष्टि उतने में तो रह गए यानी वो अनंत में भी अनंत प्रकार है उसमें से बड़ा अनंत वाला मिथ्या दृष्टि
यानी अतीत काल जो अनंत है क्योंकि अनादि कोई एंड नहीं उसको कोई बिगिनिंग ही नहीं थी ना तो कितना अनंत काल गया है तो कहते उससे भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि अनंत गुणा है। अभी यहाँ पढ़ते हैं देखो नीचे का 61 पेज पर नीचे का पैराग्राफ इस प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत वर्ग स्थानों में भी लगा लेना चाहिए क्योंकि जिसको भाग देना है फिर उसका वर्ग करो और फिर उसी वर्ग को भाग दो बात तो एक ही है लास्ट में 13 आने वाले हैं। इस प्रकार गृहित गुणकार उपरी विकल्प में द्विरूप वर्ग धारा की प्ररूपना समाप्त हुई क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा में वो पनट्टी उसका वर्ग ऐसे द्विरूप वर्ग धारा के स्थान देखेंगे हम। ऐसा नहीं जिस देखो पहले हमने पनट्टी को 13 से भाग दिया उसको फिर पनट्टी से ही गुणा किया तो पनट्टी वर्ग डिवाइडेड बाय 13 संख्या है और उसका भाग पनट्टी के वर्ग को ही देना है तो पहले उसी को हमने गुणा किया और फिर उसी के वर्ग को गृहित गुण का जिस संख्या को हमने ग्रहण किया फिर उसको उसी से गुणा करके फिर वो ऊपरी हाँ फिर उसके वर्ग को भाग देना।
यहाँ गृहित का अर्थ हमने कोई निश्चित किया है ऐसी संख्या फिर वो कोई भी हो आगे जो द्विरूप वर्ग धारा
इच्छित वर्ग का है ना इच्छित गृहित यानी ये तो अभी अब अष्टरूप धारा में अष्टरूप धारा कहो या द्विरूप घन धारा कहो क्योंकि दो संख्या का घन है वही अष्टरूप है तो अष्टरूप वर्ग धारा कहो या द्विरूप घन धारा कहो की बात है यानी इस धारा में घन घन नहीं है वर्ग वर्ग ही है स्टार्टिंग पॉइंट 8 के वर्ग से स्टार्ट होता है 8 से नहीं क्योंकि ये सारे वर्ग धाराएं हैं ना तब अष्टरूप धारा में गृहित गुणकार उपरिम विकल्प को बतलाते हैं। अब उपरिम विकल्प यानी हमारे जो द्विरूप वर्ग धारा में जो 16 स्थान है देखो ये द्विरूप वर्ग धारा में हमने स्थान देखे थे ना 4, 16, 256 यहाँ 64 से शुरू हो जाता है 4 का घन ये 16 का घन 256 का घन या 16:6 होता है एक ही बात है। तो अभी यहाँ द्विरूप घन धारा में तो कहते घन के अनंतिम भाग का, अनंतिम भाग ये घन है, ये 16 का घन है, इसको भी भाग दे सकते हैं हम 256 डिवाइडेड बाय 13 का, या डायरेक्ट 13 का भाग देना। तो घन के अनंतिम भाग का, अनंतिम भाग यानी उसका 13वां भाग, तो घन के अनंतिम भाग का यानी 13 का, डायरेक्ट वो घन को भी मत ले लो, 13 का ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर, अब ऊपर का इच्छित वर्ग लिया उन्होंने, घन राशि 4096 हुई थी ना, 16 का घन कहो या 64 का वर्ग कहो, 4096 थी, नहीं 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 घन के अनंतिम भाग है ना, घन है 4096, उसका अंतिम भाग है 13, उसका ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर, नहीं 4096 का वर्ग, उसका वर्ग कहो या 256 का घन कहो या 16:6 कहो, एक ही बात है, समझते हैं, समझ में आती है बात। पनटी देखो, द्विरूप घन धारा हम यहाँ लिखते हैं, वर्ग धारा हमने ऊपर लिखी 4, 16, 256, जो पहला स्थान है उसका घन यहाँ इसके पहले स्थान में आता है, जो 64 है, जो 8 का वर्ग है, पन 4 का ये घन है, 16 का घन यहाँ आएगा, ये 16 का घन करो ये 64 का वर्ग, हाँ देखो इसी संख्या को मैं लिखती, यह 64 है, 16 का घन है, 4096 कहो या 64 का वर्ग कहो एक ही बात है, ये 4096 है, ये 64 का वर्ग, इसका वर्ग, इसका यानी 16 के घन का वर्ग क्या होगा, 16:6 होगा, उसी 256 को कंपेयर करेंगे तो 256 का घन है, वही 256 का घन है और वही 4096 का वर्ग है, वो राशि कितनी वो यहाँ लिखी, 1,67,77,216, ये इच्छित वर्ग हुआ। उपरिम राशि क्यों कही, ये 16 का घन तो नीचे की राशि हुई, क्योंकि हमारा 256 डिवाइडेड बाय 13 वाली ध्रुव राशि यहाँ थी, उसके नीचे के सारे वर्ग स्थान है उसको अधस्तन कहेंगे और उसके ऊपर के उसको उपरीतन कहेंगे या उपरिम कहेंगे, तो इसलिए 16 के घन वाली बात ये नीचे वाली है, उसका अंतिम भाग यानी 256 का 13वां भाग 13 था, इसका भी 13, ये 13 उसका अंतिम भाग है, अनंतिम भाग कहा था उसका, इसके पहले वर्ग में भाग दो, यहाँ जो बड़ी राशि लिखी ना 1,67,77,216 वो क्या है, 16:6 है, यानी उसको हम 16 की भाषा में लिखना है तो 16:6 डिवाइडेड बाय 13 हो गया। अब उसको उसी संख्या से पहले गुणा करो यानी मल्टीप्लाइड बाय 16:6, ये जो आगे की लिखा है ना 1,67,77,216 डिवाइडेड बाय 13 इंटू वही राशि है, देखो यानी इसका अर्थ क्या है, 16:6 इंटू 16:6 डिवाइडेड बाय 13 आ गए, यहाँ तक समझ में आई बात, यानी 16:12 आ जाएगी ये डिवाइडेड बाय 13। अब उसी वर्ग को उसी वर्ग डिवाइडेड बाय 13 से भाग देना है, यानी कुछ नहीं वो तो संख्या बड़ी बड़ी हो जाएगी, या कहीं पर किसी भी वर्ग स्थान में हमको जाना है तो पहले उसको जिस किसी स्थान पर जाना है हमको आगे के जिस किसी भी, अभी हम ये 16:6 देखे इसका वर्ग करो 16:12 हो जाएगा, तो पहले उसको भाग दो फिर उसको उसी से गुणा करो फिर उसके वर्ग को उस पूरी संख्या से भाग दो तो अंत में 13 ही आने वाला है, इसको गृहित गुणकार कह दिया। हाँ 16:12। अब क्या करना है, हमेशा के उसके अर्ध छेद करो अभी इसके इसके, हाँ
ये जो उदाहरण लिखा है,
उदाहरण है
उसके आगे 40 छानों का इच्छित वर्ग, ये 1,67,00,000 वगैरह वगैरह, उसको आपने बताया 16:6।
देखो 4,096 क्या है, 16:3 है
बराबर,
और इच्छित वर्ग 16:6 है, उसको उसी से गुणा करेंगे हम, 16:6/13 को उसी 16:6 से गुणा,
वर्ग है वो 16:12 आएगा बराबर,
उसको घन है यानी 64 का वर्ग था, क्योंकि द्विरूप घन धारा में हम देख रहे हैं 64 पहला स्थान, दूसरा स्थान 64 का वर्ग, तीसरा उसका वर्ग, उसी को हमने 16 की भाषा में लिखा। अब क्या करना है, इसके अर्धच्छेद करना है, इसके जितने अर्धच्छेद हो उतनी बार उक्त भाज्य राशि के अर्धच्छेद करने पर, पहले में पहले 1,67,077 ये जो है ना उसके अर्धच्छेद कितने, जरा हम अपनी भाषा में सीखेंगे, फिर बाद में उनको पूछेंगे कितने हैं। देखो 4 के अर्धच्छेद कितने होते हैं द्विरूप वर्ग धारा में, 2। 4 के घन के अर्धच्छेद कितने हो गए, 4 के घन 64 के अर्धच्छेद, देखो 4 के 2 फिर 4 के 2 फिर 4 के 2 अर्धच्छेदों की टोटल होती है 6, इसको 3 गुणा करेंगे तो इसके अर्धच्छेद आ जाएंगे। 16 के अर्धच्छेद 4 है, 16 के घन 4,096 के कितने हो गए, 12, 256 के 8 है, 256 के घन के 24 आ जाएंगे। अब यहाँ क्या किया है हमने, घन का वर्ग किया है, घन का वर्ग यानी इसके आगे वाला स्थान, ये 4,096 का वर्ग था तो 1,67,00,000 कुछ है, उसका वर्ग यहाँ पर है, उसके अर्धच्छेद कितने हो गए, 48 हो गए, 24 दुनी, क्योंकि वर्ग धारा में 2 गुना 2 गुना होते हैं, यहाँ तक ख्याल में है। अब मेरी पद्धति जो मैंने कल बताई थी, 48 में से 16 के अर्धच्छेद माइनस करो, 44 आ जाएगा इसके, यहाँ कितने लिखे देखो
48 आया ना,
क्योंकि 16 की 16 लास्ट में रखना है हमको, अभी उनकी भाषा में उनकी पद्धति में ये 16 है, ये 256 है, ये पनट्ठी है और ये पनट्ठी का घन है, क्योंकि हमारा स्थान कहाँ पर है, ये 4,096 है, ये 4,096 का वर्ग है, ये उसका वर्ग है, हमारी भाषा में पनट्ठी का घन है। अब ये कितने वर्ग स्थान आगे है 16 से, 1 और 2, 2 वर्ग स्थान आगे ना, तो 2 बार 1 1 लिखो, उसको 2 गुना 2 गुना करो, 4 हो गए, अब ये इसको गुना 3 करो, अभी नहीं, 4 त्रिक, क्योंकि ये 3 गुना होते ना, 4 त्रिक 12 हो गए, अभी 12 में से 1 माइनस करो, 11 हो गए, 11 से 4 को गुणा करो, 44 ये आ गए, मेरा आसान लगता है मुझे क्योंकि इसमें से वो 16 के अर्धच्छेद 4 माइनस करो तो हमें डायरेक्ट उत्तर मिल जाता है। क्योंकि नीचे 16-13 अंश रहता है ना, तो ऊपर भी 16 रहना चाहिए, तो 4 अर्धच्छेद माइनस कर दो उसमें, ये अर्धच्छेद को अर्धच्छेद का भाग हर देने पर भी 13 राशि आती है, ये कहना चाहते हैं।
ये जो एक्सप्लेनेशन किया है,
नवीर सेनाचार्य ने तो ऊपर इतने नहीं है पढ़म उगहा, नहीं ये उदाहरण करके उन्होंने संपादक ने फूलचंद जी शास्त्री ने वगैरह उन्होंने लिखा है, ऊपर लिखा ना ये देखे क्या कहे, ऊपर से नीचे से दूसरी लाइन, घना घन पढ़म वग्ग मूलस्य, घना घन पढ़म वग्ग मूलस्य अनंतिम भागेना, यानी 13 से उवरी इच्छित वग्गे भागे ही दे, यानी उपरिम के इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लद्धो। नहीं, यहाँ सह संपादक है फुलचंद जी और संपादक है हीरालाल जैन, और सह संपादक दो है, फुलचंद जी शास्त्री भी है और बालचंद्र सिद्धांत चक्र सिद्धांत शास्त्री सोलापुर के थे। हम कहाँ पे, उन्होंने ये सर बना बनाया माल है इसलिए सरल लगता है। क्योंकि मूल में उन्होंने जो पद्धति बताई ना उसी को उन्होंने उदाहरण के रूप में दिया। वीर से वैसा उन्होंने उदाहरण बनाया। इसी प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत स्थानों में भी लगा लेना चाहिए, ये द्विरूप घन धारा में बता रहे हैं। इस प्रकार गृहित गुणकार उपरिम विकल्प में अष्टरूप प्ररूपणा समाप्त हुई, यानी द्विरूप घन धारा समाप्त हुई। अब घनाघन धारा में उसी को बतलाते हैं, अब वहां पर भी लेना, उसका भी अनंतिम भाग 13 है, उसके उपरिम किसी वर्ग में भाग देना, उसकी संख्या बड़ी होगी, बस इतना ही है। यानी उसकी उपरिम पहला विकल्प कौन सा आएगा, देखो द्विरूप वर्ग धारा में 4, 16, 256 है, हमारी ध्रुव संख्या ध्रुव राशि यहाँ पर थी। अब ये सारे नीचे के पहले दो स्थान वो नीचे के, तीसरे स्थान के आगे ऊपर के होते हैं द्विरूप। यहाँ तो हमने देखा 4 का घन 16 का घन 16 का 6 रिश्व। अभी घना घन में कैसे करना, यहाँ तो 4 का 4:9 आ जाएंगे, ये 16:9 आ जाएंगे और यहाँ 16:9 = 18 आ जाएंगे, 37 18। अब इसको भाग देना है उनको, पद्धति यही होगी। अभी वो संख्या उन्होंने उनको गुणाकार करके बताएंगे डायरेक्ट, संख्या बड़ी हो जाएगी। देखो हम यहाँ देखते पढ़ते हैं, घनाघन के प्रथम वर्गमूल के अनंतिम भाग का यानी 13 का, घनाघन का प्रथम वर्गमूल कौन सा है? हाँ अश्विन भाई,
512 का वर्ग
यानी 4:9 4:9 जो 2 लाख आप कह रहे हैं, 2 लाख कितना 62,000 था ना, 144 हाँ यहाँ लिखा ना, घनाघन का प्रथम वर्गमूल ना ना 4:9 4:9 नहीं 16 नहीं 16:9 तो वो तो उसका इसका वर्ग हो जाएगा। देखो यहाँ घनाघन का प्रथम वर्गमूल, ऊपर क्या लिखा था इसी पेज पर पहली लाइन, घन के अनंतिम भाग का, वहाँ घन किया था, किसका घन किया था?
16 का
किया था, इसलिए 4096 लिया। और यहाँ इस धारा का प्रथम स्थान लिया है, अनंतिम भाग का अर्थ होता है 13। अभी किसका भी करो, ऊपर इच्छित वर्ग में भाग देने पर, अब इसका ऊपर इच्छित वर्ग जो हो गया ऊपर का है ना, यानी तो हमारी भाषा में 16:18 हो जाएगी शायद,
16:9
वो तो उसका वर्ग हुआ, परंतु वो नीचे का दूसरा स्थान है, हमको ऊपरी स्थान चाहिए, ऊपरी स्थान तीसरे से ऊपरी स्थान कहलाएगा। तो इच्छित वर्ग उन्होंने डायरेक्ट किसी का वर्ग करके बतलाया है, एक्चुअली हाँ 16:9 उसका इच्छित वर्ग इन्होंने जो लिखा है वो 16:9 का बताया है यहाँ पर। यहाँ क्योंकि वो मूल में नहीं था ना, क्योंकि उपरिम भाग हम उपरिम देख रहे हैं, वो नीचे के नहीं देख रहे हैं, ये अधस्तन विकल्प कहलाएगा, परंतु समझ जाना। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल करके संख्या लिखी है, परंतु अधस्तन यानी वो सेकंड स्थान है, तीसरे स्थान से उपरिम कहेंगे, ये सारे अधस्तन हो जाएंगे। फिर भी समझने के लिए समझ लो, इच्छित वर्ग ये है, उसको पहले में पहले 13 से भाग दिया है ना। इच्छित वर्ग में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे उसी वर्ग राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे। इच्छित वर्ग हम मान लेते ना x कहो, इच्छित वर्ग हमारा x है, तो वर्ग में भाग देने पर जो लब्ध आवे x डिवाइडेड बाय 13 आया, उससे उसी वर्ग राशि को गुणित करके यानी x 13 गुणा x यानी x वर्ग डिवाइडेड बाय 13 आया ना, जो लब्ध आवे उसका उक्त वर्ग राशि के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर यानी x square divided by 13। मिथ्या दृष्टि जीव राशि आती है, उन्होंने वो संख्याओं में करके बताया। अब उसके भागहार करने हैं, उक्त भागहार के जितने अर्धच्छेद हो उतनी बार उक्त भाज्य राशि के अर्धच्छेद करने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि ही आती है। उदाहरण, उक्त भागहार के 68 अर्धच्छेद होते हैं। देखो ये 68 कैसे निकाले, मेरी भाषा में 16 के अर्धच्छेद 4 है, 16 के घन के अर्धच्छेद 4 त्रिक 12 है, इसके 36 हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने ऊपरी में राशि ली क्या? अच्छा, ये 36 यानी 72 यहाँ होते हैं, 72 में से 4 कम कर दो, 68 हो जाएंगे। उन्होंने ऊपरी में राशि ही ली है, पर ये 262 का इच्छित वर्ग जो कह दिया उन्होंने, अच्छा इच्छित वर्ग यानी वो दो एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 18 हाँ फिर से पूछो।
यहाँ पे ये जो 262,144 है वो तो प्रथम स्थान है घना गंधारा में,
हाँ।
बराबर,
हाँ।
तो यहाँ पे घना ये प्रथम वर्ग, प्रथम स्थान का वर्ग वो उन्होंने,
प्रथम स्थान का वर्ग नहीं इच्छित वर्ग लिया उन्होंने, ये 512 का वर्ग है, 4 का घना घन है,
हाँ।
ये 4 का घना घन है,
हमने 16 का लिखा,
16 का कैसे लिखते
नहीं
मैंने लिख के रखा, ये 4 का 9 है, 16 का 9 तो हमने देखा था कि ये 16 के उसको निकालने के लिए बताया था। नहीं देखो, घना घन धारा का ये पहला स्थान है, 512 का ये वर्ग है, यानी 64 का घन है ये, यानी 4096 गुणित 64 ये संख्या आनी चाहिए। ये जो इच्छित वर्ग उन्होंने इस राशि का वर्ग किया है क्या, इसके वर्ग का वर्ग किया है?
यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 262,144 का वर्ग, इससे मैं समझ गया
उसका वर्ग नहीं है ये, उसके वर्ग का वर्ग होगा शायद, मुझे अभी पता नहीं है किसका वर्ग किया उन्होंने, उसका वर्ग क्या है इतना 262,144। ये जरा जीवकांड देना ना, जीवकांड
इसी का वर्ग लगता है
जीवकांड, हाँ क्योंकि उसके डिजिट्स अगर देखते तो उसी का वर्ग लगता है, 4 × 16 736 भी हो सकता है, नहीं हाँ लेफ्ट साइड में रेड कलर का, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, अच्छा वो डी डी और यू यू लिखा है ना राइट साइड में, व्हाइट कवर डाला है उसको, वो यू 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 लिखा है ना नीचे राइट साइड का पहला पुस्तक देना, जाड़ा यू फर्स्ट पहले भाग में होगा वो। विरूप घनधारा के दो तीन स्थान तो बताएंगे ना वहां पर, पर्याप्ति प्ररूपणा में आता है ना,
देखो आंसर 13 ही आएगा।
हाँ यहाँ पर 13 ही आने वाला है, आपने ज्यादा सोचना नहीं है। ऐसा लगता है, मैं खाली पहला ही स्थान बताया, उसका वर्ग स्थान नहीं बताया। 2,62,144 इसका प्रथम स्थान है,
तुम्हारा है क्या?
उसका वर्ग उसका द्वितीय स्थान है वगैरह वगैरह बताया। अरे उसको उसी से गुणा करो, अरे वो तो लिखा है ना यहाँ, नहीं वो संख्या आएगी नहीं, कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिजिट है, वो इसी का वर्ग लगता है ना।
2,62,144
उसमें नहीं आएगा, पहली संख्या तो आएगी ना, 2-4 अरे कितने भी आने दो, पहले तो आने दो ना। हाँ मैं बताऊँ आपको डिजिट, 262144 हाँ ये उसी का वर्ग है, यानी ये 16:9 है। लिखा था परंतु उसको उपरिम कैसे कहेंगे, ये मेरा कहना। वो भी बात है, पर अभी अर्धच्छेद किसके निकाले उन्होंने, 16:9 के निकाले, ये 68 जो बताए हैं, 68 बताए वो उसके वर्ग के हैं।
उसके आगे के स्थान के हाँ,
18 के अर्धच्छेद 72 आते हैं, वार्षिक 36 × 72 और उसमें से 4 कम करके 68 जो अर्धच्छेद बताए ना, वो उसके अर्धच्छेद होने चाहिए। अच्छा अच्छा वो नीचे उसका वर्ग किया ना, वर्ग किया वर्ग किया है ना, ये 16:18 आ गए बराबर, अभी उसके अर्धच्छेद वो बराबर किया। अच्छा है ना, उसको वर्ग करके वो उपरिम चला गया,
पहले भी ऐसे ही किया।
हाँ परंतु डायरेक्ट वो पहला मेरा क्या कहना चाहते हैं, हमने द्विरूप वर्ग धारा में किसको लिया था, किसको भाग दिया था, ऊपर का देखो 4096 का इच्छित वर्ग कौन सा लिया, 16:6 तो 16:6 जो वो नहीं मैं कहना चाहती, ये इस लाइन से आगे वाली संख्या ली ना उन्होंने, वही तो मैं कह रही हूँ, तो ये इस लाइन के पहले वाली संख्या, ये इसको अधस्तन कहेंगे, उपरिम नहीं कह सकते, इतना मेरा कहना और कुछ नहीं, उदाहरण के लिए ले लो कोई बात नहीं। ख्याल में आती है बात, उसको गुणकार करने के बाद वो उपरिम हो जाता है,
उसका वर्ग किया,
वर्ग किया इसलिए उपरिम चला गया। तो फिर उसके अर्धच्छेद उतने 68 आए, ऊपर की राशि के उतने बार आधा तक, तो लास्ट में 16 रहने वाले हैं, क्योंकि 4 अर्धच्छेद हमने कम किए हैं। इसी प्रकार संख्यात असंख्यात और अनंत स्थानों में भी लगा लेना चाहिए। हाँ इस प्रकार गृहित गुणकार उपरिम विकल्प में घनाघन प्ररूपणा समाप्त हुई। अब जरा हाश मिथ्या दृष्टि जीव राशि अभी यहाँ तो कहते अभी इसको कोई एंड नहीं, अभी छोड़ दो इसको, अब सूत्र पढ़ेंगे ऊपर छह नंबर का, शासन सम्मा इट्ठी पहुड़ी, पहुड़ी यानी उससे लेकर जाओ यानी तक, कहाँ तक, संजदा संजदा ती यानी संयता संयत तक, यानी दूसरे से लेकर पांचवे तक, ती द्रव्य प्रमाण, द्रव्य प्रमाण यानी संख्या, केवड़िया कितने होते हैं, कितने पलिदो व मत्स्य असंख्य यदि भागो, पल्ले के असंख्यात भी भाग प्रमाण होते हैं, एदे ही पलिदो व मा व हिरदि अंतो मुहूर्तेन, यानी ये सब जो है प्रत्येक के अपने अपने कितने हैं, तो पल्ले का असंख्यात का भाग, वो असंख्यात का जो प्रमाण है वो वेरिएबल होगा, दूसरे गुणस्थान वाले भी पल्ले के असंख्यात विभाग, तीसरे भी उतने, चौथे भी उतने, पांच, परंतु उनकी संख्या तो अलग अलग है,
सबको मिलके भी असंख्यात,
हाँ पल्ले का असंख्यात भाग, तो वो असंख्यात का प्रमाण वो अंतर्मुहूर्त में बता रहे हैं, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में समय भी असंख्यात होते हैं, वो जो कोई छोटा बड़ा अंतर्मुहूर्त होगा उससे भाग देंगे, तो इसको क्या कहा, एदे ही, ये सब जो अलग अलग जो गुणस्थान है, चार है ना, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पलिदो व मा व हिरदि, यानी पल्ले को भाग देते हैं किससे, अंतो मुहूर्त से, अंतर्मुहूर्त से भाग देने पर इनकी संख्या आती है, पल्ले तो हम कांस्टेंट रखेंगे और ये अंतर्मुहूर्त का अलग अलग प्रमाण बताएंगे, अब ये हम हिंदी में तो किसकी नहीं, ये जो संख्या बताते हैं ना वो तो मैक्सिमम संख्या होती है, क्योंकि हमें मालूम है दूसरा तीसरा गुणस्थान कैसा है, शांतर मार्गना है, उसमें एक भी जीव न हो ऐसा कभी कभी बन सकता है, तो इतनी पल्ले के असंख्या विभाग प्रमाण संख्या तो बतलाई है, हाँ तो किसी काल में इतनी संख्या मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, ये कहना ज्यादा नहीं होगी, हमेशा ये जो कोई यहाँ की संख्या बताते ना वो मैक्सिमम पॉसिबल संख्या बताई जाती है, हम कहते मनुष्य इतने हैं उनकी संख्या प्रमाण, तो कम हो सकते हैं परंतु वो उसकी मैक्सिमम संख्या, उसको वो पार नहीं करेंगे, हाँ पल्ले उद्धार पल्ले आधा आधा उद्धा तो उसके लिए होता है उद्धार द्वीप समुद्रों के लिए, ये सब जो कहते तो अद्धा पल्ले,
यहाँ जो कह रहे हैं पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र, तो ये असंख्यात भाग असंख्यात ही होगा क्या,
है ना,
हाँ तो फिर मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है,
यहाँ मनुष्यों की बात ही नहीं है,
ओ चारों गति,
चारों गति के, ये टोटल चारों गति के मिलकर समय दृष्टि है, सॉरी साधन समय दृष्टि वगैरह वगैरह, हाँ मनुष्यों में तो 13 करोड़ 52 करोड़ वगैरह बात आती है ना, देखो अभी हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं, सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर, ग को उकार देना, बराबर लिखा है छपा है क्या, गुण का, हाँ संयता संयत गुणस्थान तक, यानी दूसरे से पांचवे तक, प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव, जब जीव कहे तो सभी चारों गति में जहाँ जो पॉसिबल है उसकी सबकी कहेंगे, क्योंकि पांचवे गुणस्थान में तो केवल मनुष्य और तिर्यंच है, और यहाँ असंख्यात संख्या बताई है, तो मनुष्य तो गिने चुने हो गए, बाकी असंख्यात तिर्यंच हो गए पांचवे गुणस्थान में, ख्याल में आती बात,
यहाँ पर प्रत्येक जो लिखा है
प्रत्येक गुणस्थान वर्ती,
तो ऊपर में प्रत्येक को कौन सा शब्द है, शासन सम्मा इट्टी पहुड़ी जाव संजदा संजदा ती पर्यंत
प्रत्येक जीव गुणस्थान वर्ती जीव जाव संजदा संजदा ती दव पमान केवड़िया,
ये प्रत्येक शब्द जो लगाया है,
प्रत्येक शब्द बाद में एदे ही पलिदो मत्स्य अवैधि अंतो मुहूर्ते, यानी ये सब प्रत्येक अपने अपने जो है वो अंतर्मुहूर्त से अपहृत होता है,
एदे ही इसका अर्थ प्रत्येक,
ये सब इनके एदे ही का अर्थ है एक्चुअल प्रत्येक नहीं होता है, अपहृत यानी डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, देखो फिर से उन्होंने क्या कहा, सासाधन से लेकर संहिता संहिता, तो कोई कहे सबका मिलकर प्रमाण कह रहे हैं, तो कहते नहीं ये उन्होंने ट्रांसलेशन में स्पष्ट किया है, ऊपर कैसे स्पष्ट होगा, उन्होंने एदे ही पलिदो महिरदि अंतो मुत्तेन्या, इनके जो हरेक का जो अपना अपना अंतर्मुर्ह से भाग दिया जाता है, वो अंतर्मुर्ह का प्रमाण अलग अलग होगा। नीचे मैं अर्थ पढ़ रही हूँ, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितने, द्रव्य प्रमाण का अर्थ हमने क्या देखा, उनकी संख्या कितनी है। तो पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र है। इन चार गुणस्थानों में प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों के प्रमाण की अपेक्षा अंतर्मूर्त से पल्लोपम अपहृत होता है, यानी अंतर्मूर्त से पल्ल्य को भाग देते हैं। वो अंतर्मूर्त का जो प्रमाण है वो भी बताएंगे, उसके लिए चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि आवली में असंख्यात समय है तो वो तो असंख्यात हो जाता है। हाँ, यहाँ काल का प्रमाण ये द्रव्यमान ही चल रहा है, परंतु वो तो संख्या कैसे बताएंगे, उपमा मान बताए ना, पल्ले उपमा मान है, उसी से द्रव्य संख्या बताई जाती है। अब उसको असंख्यात से भाग देना है तो वो असंख्यात का प्रमाण अंतर्मूर्त में बताया। पहले हमने जब मिथ्या दृष्टि देखे थे तो द्रव्य प्रमाण से, क्षेत्र से, काल से और भाव से बताए थे। अब यहाँ वो सब बातें नहीं बताएंगे, अब संख्या से बताएंगे। उनमें से पहले यहाँ सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण बतलाते, दूसरे गुणस्थान वालों का प्रमाण पहले बताएंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा इस तरह से क्रम से बताने हैं। सासाधन समय दृष्टि जीव राशि द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा कितनी है, द्रव्य प्रमाण बताए ना, यहाँ काल की बात नहीं उठाई। तो कहते पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र है, हर एक गुणस्थान के लिए ऐसा ही कहेंगे, पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र है।
अलग अलग लेना चाहिए
फिर वो, नहीं पल्ले सेम है,
पल्ले सेम,
परंतु भागहार वा जला असंख्यात वा भाग देना है, वो असंख्यात में वेरिएशन होगा। अद्धापल्य, जहाँ उसका कोई नाम नहीं लिया है तो अद्धापल्य समझना। विशेषार्थ आगे अंक संदृष्टि से, यानी छोटी संख्या लेकर सासाधन समय दृष्टि आदि चार गुणस्थानवर्ती जीव राशि का प्रमाण लाने के लिए पल्लोपम का प्रमाण 65,536, यानी पनट्टी को हम पल्ले मानकर वहां संख्या समझाने के लिए वो बताएंगे, और सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण लाने के लिए अवहार काल का प्रमाण, जिस संख्या से भाग देते उसको कहेंगे अवहार काल। काल क्यों कहा, क्योंकि अंतर्मूर्त के जितने समय है वो माप है ना, तो भागहार का प्रमाण वो काल में मापा है, अवहार काल कहेंगे उसको। अवहार काल का प्रमाण 32 कल्पित किया है। इस प्रकार सासाधन समय दृष्टि के अवहार काल 32 का 65,536 प्रमाण पल्लोपम में भाग देने पर, कहीं हम 16 से भी भाग दे सकते हैं ना, असंख्यात वा भाग यहाँ 32 मान लिया है, यहाँ तो 32 वा भाग देने पर जो संख्या आएगी। सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण 2048 आता है, उसको हमने 32 का भाग दिया, जो कि पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र है। ये समझाने के लिए उसको असंख्यात वा भाग, यहाँ 32 वा भाग है फिर भी हम उसको असंख्यात वा भाग कहेंगे। अर्थ प्ररूपणा भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए, एक होती है अंक संदृष्टि, एक होती है अर्थ संदृष्टि, अर्थ है ना यथार्थ, तो यथार्थ में भी पल्ल्य का पर्टिकुलर असंख्यात वा भाग समझना चाहिए, इसको कहेंगे अर्थ प्ररूपणा भी, यानी यथार्थ प्ररूपणा भी इसी प्रकार जानना चाहिए, यानी यथार्थ में जो पल्ल्य और असंख्यात है वहां पर भी इसी पद्धति से उसका भाग देंगे, और जो संख्या आएगी, अवहार काल का अर्थ होता है जिस संख्या से हमको भाग देना है, अवहार यानी भागहार, भागहार कहो या अवहार कहो, यह काल का यूनिट बनाया है भागहार में, जिसको हम अंतर्मूर्त कह रहे हैं यहाँ पर, उसका भी स्पेसिफिक उसका प्रमाण बताएंगे।
तो ये संख्या ये असंख्यात
है, ये असंख्यात है, यहाँ पर तो असंख्यात है, क्योंकि पल्ले का असंख्यात वा भाग है ना, वो असंख्यात ही है। हाँ लिखेंगे, परंतु वहाँ तो 32 मान लिया अभी हमने। हाँ अच्छा, आपको संदृष्टि में अंक संदृष्टि तो अंकों में होती है, अर्थ संदृष्टि, ऊपर पल्ले लिखेंगे, नीचे असंख्यात, ये पल्ले का असंख्यात का भाग, ये असंख्यात का चिन्ह है, साइन है, ये साधन वाले कितने, तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, तीसरे वाले उनके लिए भी ऐसा ही साइन तो ऐसी होगी, इस असंख्यात का प्रमाण अलग अलग है, वो यहाँ बताया जा रहा है, उसी को यहाँ अवहार काल कहा है। जहाँ बड़ा होगा अवहार काल, वहां संख्या छोटी होगी, ख्याल में आएगा। शंकाकार पूछ रहे हैं, यहाँ क्षेत्र, ये आपकी शंका का उदय, ये काल प्रमाण क्यों नहीं, मैंने बताया नहीं, द्रव्य प्रमाण ही है, ये काल की बात नहीं है, काल के प्रमाण से भाग दिया है, हमने काल में नहीं मापा है, मिथ्या दृष्टि को हमने अनंत अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के द्वारा मापा था, वो काल का माप था। हाँ, वो संख्या बताने के लिए, वो भी संख्या है, संख्या का माप बताने के लिए, तो उसको भागहार को काल में मापा है केवल, पल्ले को तो मालूम है पल्ले की संख्या, इसीलिए यह प्रश्न पूछा है। यहाँ क्षेत्र प्रमाण, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में क्षेत्र में हमने अनंत अनंत लोक कहे, और काल प्रमाण की अपेक्षा भी सासाधन सम्य दृष्टि जीवराशि का प्ररूपण क्यों नहीं किया, इससे असंख्यात गुणा ऐसा क्यों नहीं कहा, काल प्रमाण की वहां क्या कहा था, काल कौन सा लिया था हमने, कल्पकाल, कल्प या अतीत काल से अनंत गुणा भी कहा था, या कल्पकालों को अनंत अनंत गुणा किया था, तो उसका हमने एक माप बनाया, वैसे यहाँ क्यों नहीं कहा कि इससे असंख्यात गुणा है करके या संख्यात गुणा है करके, तो उसका समाधान देखो, नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव राशि का क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण की अपेक्षा से प्ररूपण करने का कारण था, वहां पर भी अनंत कहने से संख्या तो बताई गई थी, फिर भी क्षेत्र और काल से अलग से प्ररूपणा क्यों कही थी, तो कहते हैं उस प्रकार यहां पर उक्त दोनों प्रमाणों के द्वारा सासाधन समय दृष्टि जीव राशि के प्ररूपण करने का कोई कारण नहीं है, अतएव उक्त प्रमाणों के द्वारा यानी काल प्रमाण और क्षेत्र के द्वारा सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्ररूपण नहीं किया, तो वहां क्या कारण था वो पूछ रहे अभी, तो कहते वहां पर यानी मिथ्या दृष्टियों में उक्त दोनों प्रमाणों के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्ररूपण करने का क्या कारण है, उसका समाधान, असंख्यात प्रदेशी लोक में, लोक के प्रदेश कितने, तो असंख्यात है, और जीव राशि उससे अनंत अनंत गुणा से, अनंत प्रमाण जीव राशि कैसे समा जाती है, इस प्रकार से उत्पन्न हुए संदेह को दूर करने के लिए क्षेत्र प्रमाण का कथन किया जाता है, यानी लोकाकाश में तो असंख्यात ही प्रदेश है और जीवों का प्रमाण ही अनंत अनंत है, तो वो उसमें तो समा जाती है, तथा आय रहित यानी जिसमें कोई नए उत्पन्न नहीं हो गए, और सिद्ध्यमान जीवों की अपेक्षा व्यय सहित, सिद्ध्यमान यानी जो सिद्ध होते हैं, तो हर आय रहित यानी जीव जो अनंत है वो अनंत ही रहेंगे, उसमें कोई नए जीव उत्पन्न नहीं होंगे, तो कोई इनकम नहीं है, और वे चालू है, कौन सा वे, सिद्ध हो रहे हैं, तो व्यय सहित संपूर्ण जीव राशि का विच्छेद होता है या नहीं, ये आपका प्रश्न अश्विन भाई, तो जीव राशि कभी तो समाप्त होगी कि नहीं होगी, तो कहते इस प्रकार उत्पन्न हुए संदेह को दूर करने के लिए, तो अतीत काल से अनंत गुणा है, अरे तो अभी तो उससे जीव राशि कितने अनंत अनंत गुणा है, और उससे पुद्गल कितने अनंत अनंत,
वो संख्या तो बोली ऐसे ही है, वो सिद्ध हो गया है तो उसको तो माइनस तो करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा, परंतु वो कितना अनंत गुणा
है, मगर अनंत भी,
इसीलिए कहा ना कि सिद्ध्यमान जीवों की अपेक्षा व्यय सही, सिद्ध होने की अपेक्षा व्यय किया हमने, फिर भी ये राशि कभी समाप्त होने वाली नहीं है, यही तो कहना है उनका, तो ये संदेह को दूर करने के लिए काल प्रमाण का प्ररूपण किया जाता है, क्योंकि प्रश्न यही होता है ना, क्योंकि हम अपने ज्ञान की अपेक्षा क्योंकि नए उत्पन्न होते नहीं है और वो सारे सिद्ध हो चुके हैं, तो कभी संसार राशि समाप्त होगी कि नहीं होगी? तो कहते कभी नहीं होगी। परंतु इन कारणों में से यहाँ पर यानी दूसरे से आगे के गुण स्थानों में, अभी तो हम दूसरे से पांचवे की चर्चा करें, एक भी कारण संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कारण नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ तो असंख्याती जीव है, तो ऐसा कोई संदेह उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। अतः क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण के द्वारा सासाधन सम्य दृष्टि जीव राशि का प्ररूपण ग्रंथ में नहीं किया। ये जरा पहले पेज पर फुट नोट में क्या है जरा देख लेते, 63 पेज पर वही लिखा है उनकी संख्या ही, फिर भी अलग अलग ग्रंथों के उन्होंने उद्धरण दिए हैं, इसलिए उसको देख के आगे बढ़ेंगे। एक नंबर का फुट नोट, पेज नंबर 63, सांसाधन सम्यक दृष्ट्या दृष्ट्या हुआ है दृष्ट्या शोटोयो सम्यक मिथ्या दृष्टयो असंयत सम्यक दृष्टिया संयता संयताश्च, हर एक का एक एक नाम अलग लिया ना, कितने हैं? पल्योपम असंख्येय भाग प्रमिताहा, पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ये सर्वार सिद्धि में लिखा है। आगे गुमरसार जीव कांड की गाथा प्रस्तुत किए है, मिच्छा सावय सासन मिस्सा विरदा दुवारणं ताय पल्ला संखे जिदम मसंख गुण संख संख गुणम। यानी पहले पहले द्वार अनंत 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 मिच्छा सावय, यानी वो कितने अनंत अनंत, फिर शासन मिश्रा विरदा, शासन समय दृष्टि मिश्र और अविरत, कितने पल्ल संख्येज पल्ल असंख्येज दिम भाग, फिर आगे उससे संख्यात गुणा संख संख गुणा और उससे भी संख्यात गुणा या असंख्यात गुणा होगी वो
आगे में।
नहीं 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 नहीं, अविरत तक उन्होंने बताया, दूसरे तीसरे चौथे की बात कीजिए। पल्ला संख्यात भागास्तु परे गुण चतुष्टये पंच संग्रह में, यानी पल्ले के असंख्यात परे यानी उसके आगे चार गुण स्थानों में, दो तीन चार पांच में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जीव होते हैं। सासायन सासायन इचऊरो पौंती असंख्या, पंच संग्रह में लिखा है कि सासाधन आदि चार गुण स्थानों में असंख्यात जीव होते हैं, वो तो केवल असंख्यात कह के छोड़ दिया, उसका प्रमाण पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। ये विशेषार्थ नीचे 64 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, शंकाकार का कहना है कि जिस प्रकार पहले मिथ्या दृष्टि जीव राशि के प्रमाण का प्ररूपण करते समय अनंतानंता ही ओसप्पिनी उत्सप्पिनी ही न अवहिरंती कालेन, इस सूत्र के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव राशि का काल की अपेक्षा प्रमाण कहा है। हमने देखा था ना अनंतानंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के समयों से भी उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक इधर से निकालो एक तो भी वो रह जाती है। और खेते न अनंतानंता लोगा इस सूत्र के द्वारा मिथ्या दृष्टि जीव राशि का क्षेत्र की अपेक्षा प्रमाण कहा है। उसी प्रकार प्रकृत में भी यानी अभी हमारा वर्तमान का विषय जो है सासाधन समय दृष्टि जीव राशि का प्रमाण क्षेत्र और काल प्रमाण की अपेक्षा कहना चाहिए, शंकाकार की शंका का समाधान इस प्रकार समझना चाहिए कि मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत होते हैं, अतएव उनका असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में रहना असंभव है, ऐसी शंका किसी को हो सकती है। अतः इसके परिहार के लिए मिथ्या दृष्टि जीव राशि का क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा प्ररूपण किया। दूसरे मोक्ष को जाने वाले जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव राशि का व्यय तो निरंतर चालू है, वो अपेक्षा से बात बताए, यानी जीवों का नाश होता है वो व्यय नहीं लेना, पर उनकी वृद्धि कभी भी नहीं होती इसलिए उनका अभाव हो जाएगा, ऐसी शंका भी किसी को हो सकती है। अतएव इसके परिहार करने के लिए काल प्रमाण की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव राशि का प्ररूपण किया, कि अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियों के हो जाने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव राशि समाप्त नहीं हो सकती। यानी वहां तो बताया था ना, अतीत काल से भी अनंत गुना उसके मिथ्या दृष्टि जीव राशि, परंतु सासाधन समय दृष्टि जीवों के संबंध में इन दोनों प्रश्नों में से कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वे केवल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतः उनकी लोकाकाश में अवस्थिति कैसे होगी यह बात नहीं कही जा सकती। और सासाधन समय दृष्टि जीव यद्यपि मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए उनका व्यय होता है, फिर भी यानी सासाधन में से वो दूसरे में चले जाते हैं, फिर भी उपशम समय से गिर कर आते हैं ना वहां पर, फिर भी उपशम समय दृष्टि जीवों में से उसी अनुपात से यानी उसी प्रपोर्शन में सासाधन गुणस्थान को भी प्राप्त होते रहते हैं। अतएव व्यय के समान आय भी निरंतर चालू है। अब ये निरंतर किसी अपेक्षा से लेना, उसमें भी ऐसा होता है कि बीच में सांतर मार्गन है, उपशम समय को भी सांतर मार्गन है, सासाधन में भी कोई न हो ऐसा बन सकता है, वो विषय यहाँ नहीं है। तो इसमें व्यय और आय दोनों है, बस इतना कहना चाहते हैं, इसलिए उनका अभाव हो जाएगा यह भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार क्षेत्र और काल प्रमाण की अपेक्षा सासाधन समय दृष्टि जीवों का प्रमाण कहने के लिए कोई कारण नहीं होने से उक्त प्रमाणों के द्वारा, उक्त प्रमाण यानी काल प्रमाण और क्षेत्र प्रमाण, सासाधन सम्यक दृष्टि वो ध्रुव बराबर करना, ग और द करना, प और द हुए ना, सम्यक दृष्टि जीव राशि का कथन नहीं किया। अब यही हम रुकेंगे। जावानी के ज्ञान से सदा।